चाहे पूरी दुनिया अभी भी कोविड महामारी की चपेट में है, लेकिन 2021 में सुर्खियों पर छाए रहे समाचारों की भी कोई कमी नहीं रही। इस साल वॉशिंगटन में राष्ट्रपति पद के परिवर्तन ने अमरीकी लोकतंत्र की नींव का जैसे एक परीक्षण किया, और अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के साथ लोकतंत्र को बहाल करने के लिए 20 साल की एक परियोजना को भारी झटका भी लगा। आइए एक नज़र डालते हैं इस साल विश्व में गतिविधियों के चलते सुर्खियों पर रही कुछ खबरों पर। साल की शुरुआत में यानी 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में जैसे एक पलटाव आया। अमरीकी लोकतंत्र वो ग्राउंड जीरो श्री ट्रंप के झंडों के साथ भर गया, क्योंकि निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महीने पहले हुए चुनाव परिणाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र का केंद्र एक निरंतर अराजकता का दृश्य बन गया। सुरक्षा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और कांग्रेस जो बाइडेन की चुनावी जीत को प्रमाणित करने की प्रक्रिया में थी। उधर रिपब्लिकन माइक पेंस और मिच मैकोनल इस परिणाम के विरोध में थे। सेनेट नेता मिच मैकोनल ने ये भाषण दिया।
The voters, the courts, and the states have all spoken. They've all spoken. If we overrule them, it would damage our republic forever. Our democracy would enter a death spiral.
40 से भी अधिक राज्यों के 600 से अधिक लोगों पर अंततः कैपिटल दंगों में उनकी भागीदारी के लिए फाइन लगने वाला था। इसके ठीक दो हफ्ते बाद एक विभाजित और कोविड से घिरे हुए देश के लिए जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और देश को ठीक करने के अकल्पनीय कार्य की जिम्मेदारी उठाई।
दिस इज अमेरिकाज डे। This is democracy's day. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed.
उधर दुनिया के दूसरी ओर राष्ट्रपति पुतिन के पद के एक मुखर आलोचक को कथित तौर पर जहर से बच जाने के बाद रूस लौटने पर फौरन गिरफ्तार किया गया था। सोवियत काल के नोविचोक नर्व एजेंट के साथ जहर दिए जाने के बाद भी एलेक्सी लवलनी ने कहा कि वो घर वापस आकर खुश हैं।
Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав.
लेकिन उनका ये विश्वास गलत निकला। जैसे ही वो पासपोर्ट नियंत्रण से गुजरे, श्री लवलनी को सीमा प्रहरियों द्वारा तुरंत ले लिया गया और वकीलों के लिए जो उन्होंने अनुरोध किया उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। अदालत में उन पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए वो कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित गबन का आरोप था। उनका बचाव ये था कि वो लगभग घातक विषाक्तता से उबरने के लिए बर्लिन के एक अस्पताल में थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी सहित विश्व के नेताओं द्वारा निंदा के बावजूद श्री लवलनी को एक लेबर शिविर में 2.5 साल की सजा सुनाई गई।
We reiterate our call for the Russian government to immediately, unconditionally release Mr. Navalny, as well as the hundreds of other Russian citizens wrongfully detained in recent weeks for exercising their rights.
फरवरी में इस बर्मी डांसर को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसकी व्यायाम दिनचर्या का वो वीडियो वायरल हो जाएगा। उस वीडियो में म्यांमार के सैन्य तख्तापलट की शुरुआत दिखाई दी थी। इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में लोकतांत्रिक सरकार और सेना के बीच एक भयावह विरोध दिखाई दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच के फिल रॉबर्टसन ने कहा कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरते रहेंगे।
These people are not prepared to go back under military dictatorship. They've had 10 years enjoying greater civil and political liberties than their parents ever knew. And the young generation in particular is determined that the military will not succeed in their military coup.
लेकिन अंततः सेना सफल होनी थी। एक कार्यकर्ता समूह यानी रॉयटर्स द्वारा उद्धृत AAPP के अनुसार सेना तख्तापलट से 1000 से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार थी। और अप्रैल में सभी ने भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को संकट में जाते हुए देखा। एक समय आया जब वहां देश में 24 घंटे में COVID-19 के 3,00,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए जा रहे थे और डेल्टा संस्करण पिछले कोरोना वायरस वेरिएंट की तुलना में कहीं अधिक घातक और फैलने वाला साबित हुआ। जबकि दूसरी लहर ने पूरे देश को तो चौंका ही दिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि जो ऑक्सीजन की वहां पर कमी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। भारत में एक इंटेंसिव केयर यूनिट के प्रमुख डॉक्टर सुमित रे ने स्थिति को निराशाजनक बताया।
It's not a crisis, it's a devastatingly bad situation. That's how I can describe it. It's reached a point where crisis is a very mild word for it.
और उधर मध्य पूर्व में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव बढ़ गया, जिससे इस क्षेत्र में वर्षों में देखी गई सबसे भीषण हिंसा हुई। लड़ाई शुरू हुई पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने के प्रयास और अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी उपासकों पर पुलिस छापे के साथ। और तब हमास ने इजराइल के प्रमुख शहरों में रॉकेट्स की बौछार करनी शुरू कर दी। इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने कहा,
Anybody who's been to Gaza knows that it is almost impossible to surgically differentiate between terrorists and their infrastructure and civilians which are used by the terrorists as their human shields in every aspect.
और फिर आया अगस्त का महीना जब दुनिया भर ने उन विह्वल करती हुई तस्वीरों को देखा कि किस तरह से कुछ अफगान लोगों ने हताशा की स्थिति में अपने देश से भागने की कोशिश की। कारण, वहां 20 साल के कब्जे के बाद अमरीकी सेना वापस जा रही थी। दर्जनों लोग काबुल हवाई अड्डे के रनवे पर दौड़ रहे थे और अमरीकी वायुसेना के विमान के उड़ान भरने के दौरान उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस अचानक वापसी की बात की थी अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने।
I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed.
इसका परिणाम था तालिबान के लिए सत्ता में वापसी का। तालिबान, जो पिछले दो दशकों से अमेरिका और सहयोगी बलों का कठोर दुश्मन था। हजारों अफगानों ने हवाई अड्डे के उन फाटकों तक पहुंचने की सख्त कोशिश की जिन पर एलाइड देशों की सेना का पहरा था। नवंबर में हजारों की संख्या में यूरोपीय संघ में प्रवेश करने के लिए बेताब प्रवासी पोलैंड और बेलारूस सीमा पर इकट्ठे हुए और बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को खासी आलोचना का सामना करना पड़ा कि वो प्रवासियों को अपने राजनीतिक विवाद में मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। सीमा पर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार से जूझता देखा गया। एक बेहतर जीवन के लिए शायद केवल क्षण भर के लिए वो खदेड़ भी दिए गए। यानी 2021 एक बड़े मानवीय संकट में घिरा रहा। SBS न्यूज के लिए टाइस ओ क्यूजी की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया अनीता बरार ने।